एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसको सुनते ही ना ज्यादातर लोगों के मन में शायद गड़बड़ी, हंगामा या फिर अव्यवस्था का ख्याल आता है।
शब्द है अराजकतावाद,
अनार्किज्म।
पर क्या इसका मतलब वाकई यही है?
हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है ना, और आज हम इसी धारणा को थोड़ा चुनौती देंगे। कॉलिन वार्ड की एक बहुत ही अहम किताब है अनार्किज्म, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसके जरिए समझेंगे। वार्ड हमें दिखाते हैं कि देखो, अराजकतावाद असल में वो हिंसा या तोड़फोड़ का नाम नहीं है।
अच्छा।
हाँ, बल्कि ये इंसानी समाज के संगठन का एक बहुत ही पॉजिटिव और कह सकते हैं व्यवहारिक तरीका हो सकता है।
हाँ, और कमाल की बात यह है, जैसा वार्ड कहते हैं कि ये तरीका कोई मतलब भविष्य का सपना नहीं है,
बिल्कुल।
ये तो हमारे आसपास हमारी रोज की जिंदगी में पहले से मौजूद है। हम अनजाने में ही सही, पर शायद इन सिद्धांतों पर चलते भी रहते हैं। तो आज कोशिश करेंगे इसी छुपी हुई सी सच्चाई को समझने की।
और ये किताब आज इसलिए भी जरूरी लगती है क्योंकि दुनिया भर में लोग, आप देखें तो, केंद्रीकृत सत्ता और बड़े बड़े सिस्टम्स पर सवाल उठा रहे हैं, है ना, और लोकल लेवल पर समाधान ढूंढ रहे हैं।
सही कहा। तो चलिए बात शुरू करते हैं लेखक से। कॉलिन वार्ड, 1924 से 2010, कौन थे ये? सिर्फ कोई थ्योरिस्ट तो नहीं थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वार्ड ब्रिटेन के एक जाने माने अराजकतावादी लेखक और विचारक तो थे ही, लेकिन उनका बैकग्राउंड बहुत ही अनूठा था। वो पेशे से आर्किटेक्ट थे, टाउन प्लानर थे।
आर्किटेक्ट।
हाँ, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ कागज पर सिद्धांत नहीं गढ़े, उन्होंने असल दुनिया में जमीन पर काम किया। लोगों के रहने की जगहें, समुदाय कैसे बनते हैं, कैसे चलते हैं, इन सब पर उनका बहुत गहरा अनुभव था।
अच्छा, तो मतलब उनका नजरिया सिर्फ किताबी नहीं बल्कि एकदम प्रैक्टिकल था, जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ।
हाँ हाँ, यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। उन्होंने दशकों तक हाउसिंग कोऑपरेटिव्स में, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स में बहुत एक्टिवली हिस्सा लिया, और उन्होंने 1961 से 70 तक एनआरकी नाम की एक बहुत प्रभावशाली पत्रिका भी एडिट की थी,
अच्छा,
जिसमें इसी तरह के जमीनी स्तर के प्रयोगों और विचारों पर जोर दिया जाता था। तो उनका अराजकतावाद कोई हवाई बातों वाला नहीं था, वो था रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होने वाला, जीता जागता। वो एक्शन में अराजकता की बात करते थे, एनार्किज्म इन एक्शन।
एक्शन में अराजकता, दिलचस्प है। तो ये किताब एनार्किज्म, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, फिर हमें बताती क्या है, इसका मुख्य सार क्या है, कह सकते हैं?
देखिए, ये किताब सबसे पहले तो वो जो आम गलतफहमियां है ना अराजकतावाद को लेकर, कि ये सिर्फ हिंसा है, अव्यवस्था है, उनको दूर करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। वार्ड इसे एक सामाजिक दर्शन की तरह पेश करते हैं जो इंसानी सहयोग, आपसी मदद और स्व संगठन मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित है। उनका तर्क है कि ये चीजें हमारे स्वभाव का हिस्सा हैं।
और उनका वो एक आइडिया था ना, बर्फ के नीचे दबे बीज जैसा कुछ।
हाँ हाँ, वो एक बहुत खूबसूरत मतलब मेटाफर है। वॉट कहते हैं कि अराजकतावादी समाज या सिद्धांत कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हमें भविष्य में बनाना है, वो तो हमेशा से है, बर्फ के नीचे दबे बीज की तरह। सीड्स बीनीथ द स्नो, मतलब जो राज्य है, स्टेट, जो बड़ी नौकरशाही है, पूंजीवाद है, दूसरी सत्तावादी ताकतें, इनके बोझ के नीचे लोगों की जो क्षमता है ना स्वैच्छिक सहयोग से, आपसी मदद से चीजें चलाने की, वो हमेशा दबी रहती है। हमें बस उसे पहचानना है और पनपने का मौका देना है।
तो ये किताब एक तरह से हमें दिखाती है कि अराजकतावाद का मतलब शासक का न होना है, एनाकोस, न कि व्यवस्था का न होना।
बिल्कुल।
ये ऊपर से थोपी गई व्यवस्था के बजाय नीचे से लोगों की आपसी सहमति से बनी व्यवस्था की बात करती है। तो किताब पहले गलतफहमियां दूर करती है, फिर मूल सिद्धांत समझाती है, स्वैच्छिक जुड़ाव, आपसे मदद, विकेंद्रीकरण, और फिर दिखाती है कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में कहां कहां काम करते हैं या कर सकते हैं। चलिए अब इन सिद्धांतों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अराजकतावाद की बुनियाद है बिना शासक के व्यवस्था, लेकिन इसका मतलब क्या है, खासकर जब हम राज्य और सत्ता की बात करते हैं? राज्य को कैसे देखते हैं वार्ड?
देखिए, वार्ड और कई क्लासिकल अराजकतावादी विचारक भी राज्य को मतलब स्टेट को कोई नेचुरल या जरूरी संस्था नहीं मानते। वो ऐतिहासिक तौर पर देखते हैं कि राज्य अक्सर विजय, जबरदस्ती, हिंसा के जरिए स्थापित हुए हैं। राज्य का स्वभाव ही होता है केंद्रीकरण करना, सेंट्रलाइज करना, अपनी शक्ति बढ़ाना। और ऐसा करते हुए वो अक्सर जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं उनकी स्वायत्तता, उनके आपसी सहयोग के जो नेचुरल तरीके होते हैं, उनकी अपनी बनाई संस्थाएं होती हैं, उनको कमजोर कर देता है या नष्ट कर देता है।
अच्छा।
और उसकी जगह एक बड़ी इम्पर्सनल अमानवीय ऐसी नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी ले लेती है।
तो ये आलोचना सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं है, मतलब राज्य, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं?
नहीं नहीं, ये उससे आगे जाती है। वार्ड राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भी आलोचना करते हैं। वो मानते हैं कि ये लोगों के बीच बनावटी दीवारें खड़ी करता है। संगठित धर्म, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, जो अक्सर बिना सवाल किए आज्ञा मानने को कहता है, और यहां तक कि कानून, लॉ भी।
कानून भी?
हाँ, क्योंकि वो कई बार ताकतवर लोगों के हितों की रक्षा ज्यादा करता है और आम लोगों की जो स्वाभाविक न्याय की भावना होती है उससे दूर होता है। तो ये सब वार्ड की आलोचना के दायरे में आते हैं। मूल बात यह है कि कोई भी ऐसी बाहरी सत्ता जो व्यक्ति और समुदाय की स्वतंत्रता और स्वैच्छिक सहयोग को दबाए, वो समस्याग्रस्त है।
तो समाज चलेगा कैसे? क्या वॉट इसका कोई नक्शा, कोई ब्लूप्रिंट देते हैं कि ऐसा होगा अराजकतावादी समाज?
नहीं, और शायद यही अराजकतावाद की खासियत भी है। वॉट कोई एक सही मॉडल या ब्लूप्रिंट नहीं देते। उनका मानना था कि अलग अलग समुदायों को अपनी जरूरत और हालात के हिसाब से अपने तरीके खोजने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, वो कुछ बुनियादी सिद्धांत जरूर बताते हैं जिन पर ऐसा समाज टिक सकता है। पहला है स्वैच्छिक जुड़ाव, वॉलंटरी एसोसिएशन।
स्वैच्छिक जुड़ाव, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा आसान शब्दों में?
इसका सीधा सा मतलब है कि लोग अपनी मर्जी से, अपनी जरूरतों और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से समूह बनाएं, ग्रुप्स फॉर्म करें।
अच्छा।
चाहे वो काम करने के लिए, जैसे कोई कोऑपरेटिव बना लिया, या किसी खास मुद्दे पर काम करने के लिए, जैसे कोई पर्यावरण समूह, या बस साथ रहने के लिए, जैसे कोई हाउसिंग सोसाइटी।
हाँ।
और उतनी ही आसानी से वो उन समूहों को छोड़ भी सकें या बदल भी सकें। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई परमानेंट मेंबरशिप नहीं, जब तक व्यक्ति खुद न चाहे।
ठीक है, ये समझ आया। और दूसरा सिद्धांत?
दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है आपसी सहायता,
म्यूचुअल एड।
ये विचार रूसी अराजकतावादी थे पीटर क्रोपोटकिन, उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से पेश किया था।
हाँ, क्रोपोटकिन का नाम सुना है।
हाँ, उनका कहना था कि देखो, डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उसका मतलब सिर्फ क्रूर कंपटीशन नहीं है, बल्कि जानवरों में भी और इंसानों में तो है ही, सहयोग करने की, एक दूसरे की मदद करने की प्रवृत्ति उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे का सहारा बनकर ही टिके रहते हैं ना। वार्ड इसी आपसी मदद को समाज का आधार मानते हैं, सिर्फ कंपटीशन या लालच को नहीं।
ये बात तो सुनने में बहुत बहुत स्वाभाविक लगती है। अपने आप भी तो हमने देखा है, कहीं कोई आपदा आती है, बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तो कैसे लोग खुद ब खुद एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ जाते हैं, सरकार का इंतजार थोड़ी करते हैं।
बिल्कुल सही, बिल्कुल। यही तो वार्ड के एक्शन में अराजकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। तीसरा सिद्धांत है संघवाद, फेडरलिज्म। लेकिन इसे आज के पॉलिटिकल सिस्टम वाले फेडरलिज्म से कंफ्यूज नहीं करना है। ये नीचे से ऊपर, बॉटम अप चलने वाला मॉडल है।
नीचे से ऊपर, वो कैसे?
मतलब पहले होंगे स्वायत्त, ऑटोनॉमस, स्थानीय समूह, जैसे गांव, मोहल्ला, वर्कशॉप, स्कूल। ये अपने फैसले खुद लेंगे। फिर अगर उन्हें लगता है कि बड़े स्तर पर तालमेल, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो वो आपस में मिलकर एक संघ, एक फेडरेशन बना सकते हैं। और अगर इन संघों को प्रतिनिधि, डेलीगेट्स भेजने की जरूरत पड़े, तो वो प्रतिनिधि अपने भेजने वाले समूह के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होंगे, उनके निर्देशों पर काम करेंगे और उन्हें कभी भी वापस बुलाया जा सकेगा, रिकॉलेबल मैंडेट।
अरे वाह।
हाँ, कोई ऊपर बैठी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी जो हुक्म चलाए, पावर नीचे ग्रासरूट लेवल पर ही रहेगी।
ये दिलचस्प है। तो ये सिद्धांत को ठीक है, पर जैसा आपने कहा, वार्ड का जोर एक्शन में अराजकता पर था। ये चीजें असल जिंदगी में कहाँ दिखती हैं? क्या ये सिर्फ छोटे मोटे उदाहरण हैं या कुछ बड़ा भी है?
हाँ, यहीं पर वार्ड की बात सबसे ज्यादा असरदार हो जाती है। वो कहते हैं कि हमें कहीं दूर देखने की जरूरत ही नहीं है, ये सिद्धांत हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, बस हम उन्हें इस नजरिए से देखते नहीं। कुछ उदाहरण सोचिए ना।
जैसे?
जैसे मान लीजिए किसी कॉलोनी या मोहल्ले के लोग हैं, वो मिलकर बच्चों के खेलने के लिए पास के पार्क के देखभाल का जिम्मा उठा लेते हैं।
हाँ, होता है ऐसा।
या अपनी गली की सफाई का इंतजाम करते हैं, या मिलकर कोई त्योहार मनाते हैं। ये क्या है? ये स्वैच्छिक जुड़ाव और आपसी मदद ही तो है, कोई सरकारी आदेश तो नहीं आया था ये करने के लिए।
सही बात है।
या फिर दुनिया भर में जो आपसी मदद समूह चलते हैं, म्यूचुअल एड ग्रुप्स, जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस या दूसरे सपोर्ट ग्रुप्स, इनमें कोई बॉस नहीं होता, कोई फीस नहीं होती, सदस्य एक दूसरे के अनुभव और सहारे से ही अपनी समस्याओं से जूझते हैं। कई देशों में स्क्वाटर आंदोलन हुए, स्क्वाटर मूवमेंट्स, जहां बेघर लोगों ने खाली पड़ी सरकारी या निजी इमारतों पर कब्जा करके उन्हें रहने लायक बनाया और समुदाय बसाए, या फिर लोगों का मिलकर बिना बिल्डर के अपना घर बनाना, सेल्फ बिल्ड हाउसिंग। ये सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन और स्वसंगठन का उदाहरण है।
वर्कर कोऑपरेटिव्स का भी जिक्र आता है शायद।
बिल्कुल, वर्कर कोऑपरेटिव्स ऐसी कंपनियां या फैक्ट्रियां जहां मालिक कोई एक व्यक्ति या शेयर होल्डर नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले मजदूर ही होते हैं। वो मिलकर फैसले लेते हैं, मुनाफा आपस में बांटते हैं। स्पेन का मोंड्रागन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन इसका एक बहुत बड़ा और सफल उदाहरण है। हजारों लोग काम करते हैं वहाँ।
मोंड्रागन, हाँ, सुना है इसके बारे में।
39 का जो स्पेनिश गृह युद्ध था, उस दौरान स्पेन के कुछ हिस्सों में किसानों और मजदूरों ने जमींदारों और फैक्ट्री मालिकों के भाग जाने के बाद जमीन और कारखानों पर कब्जा कर लिया और उन्हें सामूहिक रूप से कलेक्टिवली सफलतापूर्वक चलाया, कुछ समय के लिए सही पर चलाया।
और आज के जमाने में डिजिटल दुनिया में कुछ,
अरे हाँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट, सोचिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या विकिपीडिया।
हाँ, विकिपीडिया,
इन्हें हजारों लोगों ने मिलकर बनाया है स्वैच्छिक रूप से, बिना किसी एक बॉस के, बिना मुनाफे के लालच के। ये ज्ञान और तकनीक का साझा खजाना है जो आपसी सहयोग से बना है। तो ये भी एक तरह से अराजकतावादी सिद्धांत का ही उदाहरण है।
ये तो वाकई बहुत सारे उदाहरण हैं, छोटे से लेके बड़े तक। और एक और बात जो वाड उठाते हैं वो है साधन और साध्य की एकता। उसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझाएंगे?
हाँ, ये वाड के लिए और कई अराजकतावादियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है, साधन और साध्य की एकता,
यूनिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स।
इसका मतलब है कि आप जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं वो आपका साध्य हो गया एंड, उसे बनाने के तरीके, वो साधन हुए मीन्स, भी वैसे ही होने चाहिए।
अच्छा,
अगर आप एक आजाद, बराबरी वाला, गैर हिंसक समाज बनाना चाहते हैं तो आप उसे तानाशाही, हिंसा या जबरदस्ती के तरीकों से हासिल नहीं कर सकते।
यानी जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, सीधी सी बात है।
बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वार्ड हिंसक क्रांति या सत्ता पर कब्जा करने के बजाय सीधी कार्रवाई पर जोर देते हैं, डायरेक्ट एक्शन, मतलब अपनी समस्याओं को खुद हल करना सरकार या बॉस का इंतजार किए बिना, वैकल्पिक संस्थाएं बनाना, क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस जैसे कोऑपरेटिव्स, फ्री स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, और वर्तमान में ही भविष्य के समाज के मूल्यों को जीना। इसे प्रीफिगरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं।
प्रीफिगरेटिव पॉलिटिक्स,
हाँ, मतलब जिस तरह का समाज चाहिए उसी तरह के रिश्ते और संस्थाएं अभी से बनाना शुरू कर दो, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही। इंतजार मत करो कि पहले पूरी व्यवस्था बदलेगी तब हम करेंगे। और इसका पर्यावरण से भी कोई कनेक्शन जोड़ते हैं वो। वार्ड का मानना था कि एक विकेंद्रीकृत समाज, डिसेंट्रलाइज्ड, जो स्थानीय स्तर पर केंद्रित हो, जो बड़े निगमों और विशाल सरकारी योजनाओं पर कम निर्भर हो, वो पर्यावरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार हो सकता है।
कैसे?
जब लोग अपने आसपास के संसाधनों पर सीधे निर्भर होते हैं और उनके मैनेजमेंट में उनकी सीधी भूमिका होती है तो वो उनकी देखभाल बेहतर ढंग से करते हैं। बड़ी स्केल की इकोनॉमी अक्सर लोकल पर्यावरण को नजरअंदाज कर देती है ना?
हाँ, ये बात तो सही है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को थोड़ा समेटें तो कॉलिन वार्ड के अराजकतावाद से मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं, क्या की टेकअवेज है?
मेरे हिसाब से कुछ मुख्य बिंदु भरते हैं। पहला, अराजकतावाद अव्यवस्था नहीं बल्कि एक अलग तरह की व्यवस्था है। ये बिना शासक के नॉन हायरार्किकल, स्वैच्छिक सहयोग और आपसी सहमति पर आधारित व्यवस्था का दर्शन है।
ठीक है।
दूसरा, ये भविष्य का कोई यूटोपियाई सपना नहीं बल्कि वर्तमान की एक जीती जागती सच्चाई है। वो जो एक्शन में अराजकता या बर्फ के नीचे दबे बीज वाली बात है, वो हमें दिखाती है कि ये हमारे चारों ओर मौजूद है, हमें बस इसे पहचानना और पोषित करना है। तीसरा, राज्य या केंद्रीकृत सत्ता अक्सर सामाजिक सहयोग में मददगार होने के बजाय बाधा बनती है। ये जरूरी नहीं कि समाज को जुड़े रखने के लिए एक बाहरी ताकत चाहिए ही, कई बार यही ताकत लोगों के स्वाभाविक रिश्तों और पहलों को कुचल देती है।
चौथा,
सहयोग और आपसी मदद मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। कॉम्पिटिशन और स्वार्थी सब कुछ नहीं है। क्रोपोटकिन और वार्ड हमें याद दिलाते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं और सहयोग हमारी प्रगति का आधार है।
और पांचवा,
साधन और साध्य एक होने चाहिए। स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को दमनकारी या असमान तरीकों से हासिल नहीं किया जा सकता। बदलाव की प्रक्रिया भी उन्हीं मूल्यों को दर्शाने वाली होनी चाहिए।
ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था, ये सिर्फ कोई पश्चिमी विचार नहीं लगते। अपने यहाँ भारत में देखे ना, गांव में आज भी कई जगह पानी पंचायतें हैं जो मिलकर पानी का प्रबंधन करती हैं।
हाँ बिल्कुल।
या शहरों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA जो अपनी कॉलोनी की समस्याओं को खुद सुलझाने की कोशिश करती हैं, कम से कम कोशिश तो करती हैं। ये सब कहीं ना कहीं वार्ड के विचारों से मिलते जुलते हैं। लोग बिना ऊपर से आदेश आए अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत कितने यूनिवर्सल हैं। वार्ड की लिखने की शैली भी काफी सीधी और सरल बताई जाती है। क्या कुछ ऐसे विचार या कोट्स हैं जो उनकी सोच का सार पकड़ते हों, जो याद रह जाएं?
उनकी किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो बहुत पावरफुल हैं और याद रह जाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे एक तो यही, अराजकतावाद दूर के भविष्य का सपना नहीं है, यह मानव संगठन का एक तरीका है जो रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव में निहित है।
ये तो सीधा उनके पूरे नजरिए का निचोड़ है।
बिल्कुल, कि अराजकतावाद यही है, अभी है, हमारे रोज के कामों में। फिर वो बीज वाली बात, एक अराजकतावादी समाज हमेशा मौजूद रहता है, जैसे बर्फ के नीचे बीज, राज्य और उसकी नौकरशाही, पूंजीवाद और उसकी बर्बादी के भार के नीचे दबा हुआ।
ये बहुत आशा देती है ना, कि क्षमता मौजूद है।
हाँ, कि बाहरी दबावों के बावजूद इंसानी सहयोग की क्षमता कभी खत्म नहीं होती। फिर उन्होंने नीचे का एक वाक्य उधार लिया था जो राज्य के चरित्र को दिखाता है। राज्य सबसे ठंडा राक्षस है, द स्टेट इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल कोल्ड मॉन्स्टर्स।
ओहो,
ये राज्य की जो अमानवीय, इम्पर्सनल और नौकरशाही प्रकृति होती है ना, उसकी ओर इशारा करता है, जो अक्सर इंसानी जरूरतों से ऊपर अपने नियमों को रखती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, हमें किसी एक भव्य डिजाइन, ग्रैंड डिजाइन की जरूरत नहीं, बल्कि जीने के हजारों लाखों प्रयोगों की जरूरत है।
वाह,
ये विविधता, लचीलेपन और जमीनी स्तर से समाधान निकालने की जरूरत पर जोर देता है। कोई एक साइज सब पर फिट नहीं होता ना।
बिल्कुल, ये बातें सच में हमें अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती हैं। हम सत्ता और संगठन के बारे में कितना कुछ बस मानकर चलते हैं बिना सवाल किए। तो फिर सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या हम इन्हें सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन तक सीमित रखें, या इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी हैं?
अरे, वार्ड के हिसाब से तो ये विचार जीने के लिए ही हैं, और इसकी शुरुआत बहुत छोटे लोकल लेवल पर हो सकती है। कुछ तरीके सोच सकते हैं।
जैसे,
पहला, अपने समुदाय में सक्रिय हों। सिर्फ समस्याओं के बारे में शिकायत करने के बजाय देखें कि आप पड़ोसियों के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। क्या आपके इलाके में कोई खाली जमीन है जहां मिलकर सब्जियां उगाई जा सकती हैं? सामुदायिक बागवानी।
हाँ, ये आजकल काफी हो रहा है।
या क्या लोग अपने औजार, टूल्स साझा कर सकते हैं ताकि सबको ना खरीदने पड़े? टूल लाइब्रेरी। क्या कोई ऐसा नेटवर्क बन सकता है जहां लोग जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के बच्चों की देखभाल कर सकें या बीमार होने पर मदद कर सकें? आपसी सहायता नेटवर्क, मतलब सरकार या नगर निगम का इंतजार करने के बजाय खुद पहल करें।
दूसरा,
काम की जगह पर बदलाव लाएं। जहां आप काम करते हैं वहां क्या ज्यादा लोकतांत्रिक और भागीदारी वाले तरीके अपनाए जा सकते हैं? क्या फैसलों में सबकी राय ली जा सकती है? अगर आप अपना कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो क्या वर्कर कोऑपरेटिव मॉडल पर विचार कर सकते हैं, जहां मुनाफा और नियंत्रण कर्मचारियों के हाथ में हो, या मौजूदा कोऑपरेटिव्स का समर्थन करें?
तीसरा, शायद रिश्तों में।
बिल्कुल, निजी रिश्तों में समानता लाएं, अपने परिवार में, दोस्तों के साथ, अपने साथी के साथ। रिश्तों को बराबरी, आपसी सम्मान और सहमति, कंसेंट पर आधारित बनाएं। हुक्म चलाने या जोर जबरदस्ती की बजाय बातचीत और समझने की कोशिश करें। और चौथा, अपना नजरिया बदलें। ये शायद सबसे अहम है। अपने चारों ओर देखें और पहचानें कि कहां कहां लोग बिना किसी बाहरी दबाव के सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उन छोटे छोटे अराजकतावादी पलों को सराहें। साथ ही जहां भी आपको गैर जरूरी सत्ता, हायरार्की या नियम दिखें, उन पर सवाल उठाएं। बड़े क्रांतिकारी बदलाव का इंतजार करने के बजाय अपने दायरे में लोकल लेवल पर सकारात्मक बदलाव लाने पर ध्यान दें।
मेरे लिए ना, इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख निकलती है वो ये है कि हम अक्सर अपनी जो कलेक्टिव क्षमता है उसे कितना कम आंकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमें गाइड करने, कंट्रोल करने के लिए हमेशा किसी बाहरी सत्ता की जरूरत है। वार्ड हमें याद दिलाते हैं कि नहीं, हमारे अंदर सहयोग करने, खुद को ऑर्गेनाइज करने और अपनी समस्याओं को मिलकर हल करने की अद्भुत शक्ति है। ये अराजकतावाद का एक बहुत ही मानवीय, बहुत प्रैक्टिकल और उम्मीद से भरा पहलू है।
और मेरे लिए वार्ड की खूबी ये है कि वो एक ऐसे विचार को, जिससे लोग अक्सर डरते हैं या जिसे गलत समझते हैं, उसे कितना सहज और प्रासंगिक बना देते हैं। वो इसे किताबी दुनिया से निकालकर हमारी गली, हमारे मोहल्ले, हमारे रिश्तों तक ले आते हैं। वो दिखाते हैं कि बदलाव की शुरुआत कहीं दूर भविष्य में नहीं, बल्कि यहीं अभी हमारे रोजमर्रा के कामों और रिश्तों में हो सकती है।
हाँ,
ये एक तरह से हमें अपनी जिंदगी और अपने समाज को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और आजाद बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने का निमंत्रण है। ये सोचना कि हम खुद कितने सक्षम हैं, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।